हरे कृष्ण हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो इस कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण के नाम के अलावा और कोई अन्य उपाय नहीं है। तो वास्तव में जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान के नाम का सहारा लेता है, आश्रय ग्रहण करता है, वो व्यक्ति जिसे कोई भी भौतिक स्थिति शुद्ध भगवत नाम से डिगा नहीं सकती, उसे अन्य और कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। इसे भागवत विधि कहते हैं, यानी भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन की जो विधि है, ये अपने आप में संपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, उस स्थिति से केवल मात्र भगवान के नाम के श्रवण और कीर्तन के आधार पर वो भगवत धाम जा सकता है। तो यदि कोई भक्त यहां पर उपस्थित हैं जिनके हरिनाम लेने में कोई भी भौतिक स्थिति रुकावट नहीं आती, चाहे खाना मिले नहीं मिले, गर्मी हो कि सर्दी हो, उनका हरिनाम चलता है, चलता है मतलब घिसटता नहीं है, शुद्ध नाम ले रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए ये सेमिनार नहीं है, क्योंकि ऐसे भक्तों को वर्णाश्रम की आवश्यकता नहीं है, वो केवल भगवान के नाम जब से भगवत धाम जाएंगे। लेकिन जो भक्त लोग मात्र इस भागवत विधि के बल पर प्रगति करने में असमर्थ हैं, क्योंकि उनका भौतिक जगत के अंदर प्रवेश अधिक है, इसलिए उनके लिए हरि नाम को सहायता देने के लिए शास्त्रों के अनुसार एक अन्य मार्ग सुझाया जाता है, वो है पांचरात्रिक मार्ग। अर्थात दीक्षा ग्रहण करना पांचरात्रिक आगम शास्त्रों के अनुसार, और भगवान के श्री विग्रह की पूजा आराधना करना। इस विधि से भक्त का जीवन अधिक नियमित होता है, जिसकी वजह से हरिनाम लेने में सुविधा होती है। तो ये द्वितीय स्तर है। अगर मात्र भगवत विधि से हम संभव नहीं है भगवत धाम जाना, हमें और सपोर्ट चाहिए, तो फिर पांचरात्रि की विधि आती है। फिर संभव है कि केवल मात्र शिव विग्रह की पूजा और हरिनाम, पूरा समय पूरा जीवन केवल इन्हीं दो क्रियाओं में संलग्न रहना और अन्य कोई भी भौतिक स्थिति से प्रभावित हुए बिना हरिनाम और अर्च विग्रह की पूजा सेवा करना, जिनके लिए संभव नहीं है, जिनको उनके शरीर से संबंधित, समाज से संबंधित, आर्थिक स्थिति से संबंधित, राजनीतिक स्थिति से संबंधित जो चीजें हैं, उनके हरिनाम को और अर्च विग्रह की पूजा सेवा को प्रभावित करती हैं, जिनको एक अधिक अनुकूल वातावरण चाहिए, अनुकूल सामाजिक राजनीतिक आर्थिक वातावरण चाहिए शुद्ध हरिनाम लेने के लिए, उनके लिए फिर तीसरा स्तर जो सपोर्ट करता है, सामर्थ्य प्रदान करता है हरिनाम को, वो है वर्णाश्रम। तो यदि यहां पर उपस्थित भक्त लोग में से कुछ को ऐसा प्रतीत होता है, अपने जीवन में ऐसा लगता है कि उनको जॉब में इतना टाइम देना पड़ता है कि उसके लिए, इसकी वजह से भगवान का नाम लेने के लिए भी और अन्य भक्ति क्रियाएं नवविधा भक्ति के अंदर करने के लिए भी समय पर्याप्त नहीं मिल पाता है, जो भक्त लोग आए दिन ऐसा अनुभव कर रहे हैं, जॉब आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता है, या जो भक्त लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि जिस वातावरण में वो रह रहे हैं, जिस कंपनी में या जहां पर काम कर रहे हैं, चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बड़ी घनिष्ठता से उनको संपर्क रखना पड़ता है और उनकी चेतना भक्ति से बिल्कुल विपरीत है और इतनी विरोधी है कि उसकी वजह से उनके असत्संग की वजह से उनकी भक्ति अनुशीलन में दिक्कत आती है, रुकावट आती है। या ऐसे भक्त यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें उनकी आर्थिक और अन्य स्थिति को लेकर के इतनी चिंताएं रहती हैं कि जब के समय में भगवान का नाम सुनने के जगह ज्यादातर वो चिंताएं दिमाग में घूमती हैं। यदि यहाँ पर ऐसे भक्त लोग उपस्थित हैं जो महसूस कर रहे हैं कि उनके बच्चों को वो भक्त बनाना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि स्कूलों में भेजते हैं और स्कूलों में तो पूरा उसके विपरीत शिक्षण उनको मिल रहा है, तो जो असहाय अनुभव कर रहे हैं अपने आप को कि हम शास्त्र बोलते हैं पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, जब तक हम अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं दिला सके यदि तो हमें माँ बाप नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम असहाय अनुभव कर रहे हैं अपने आप को क्योंकि हमें ऐसे शिक्षण संस्थाओं में अपने बच्चों को भेजना पड़ता है जहाँ वो बिल्कुल उसके विपरीत ही सिखाया जाता है। यदि ऐसे भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं, यदि ऐसे भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं जिनके ऊपर इतने सारे लोन हैं, कर्जे, हाउस लोन, कार लोन, दिस लोन, दैट लोन, कि वो आगे तक सोचते रहते हैं इसका लोन कैसे चुकाऊंगा, उसका लोन कैसे चुकाऊंगा, तो फिर ये सब चिंताएं चलती हैं। या ऐसे भक्त लोग हैं जिनका पारिवारिक जीवन वो सुख में नहीं है। शास्त्र कहते हैं कोई पारिवारिक जीवन सुख में नहीं होता है, वास्तव में पूरा भौतिक जगत ही सुख में नहीं है, दुखालय अशाश्वतम है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुख में नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट नॉर्मली रहना चाहिए। तो भक्त लोग ऐसा लगता है कि पारिवारिक जीवन है लेकिन इतनी मुठभेड़ है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं और पत्नी एक जगह एक सिटी में है और पति एक सिटी में है, लड़का एक सिटी में है, लड़की एक सिटी में है, सब अलग अलग बिखरे हुए हैं और पूरा इस तरह से स्थिति है जिसकी वजह से उनके हरिनाम में रुकावट आ रही है। यदि ऐसे भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं तो उनके लिए ये सेमिनार मदद करेगा, ऐसी आशा है। तो इस सब जो अनेक अनेक समस्याएं जिनकी वजह से हमारा हरिनाम पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारा मुख्य उद्देश्य है हरिनाम हमें लेना है, भगवान की सेवा अच्छे से करनी, लेकिन क्योंकि जैसा हमने देखा यदि हम भौतिक प्रकृति के चंगुल में इतने अधिक घिरे हुए हैं, तीनों गुणों में से इतने अधिक प्रभावित हैं कि जब तक ये शरीर संबंधी चीजें अनुकूल नहीं हो तब तक हमारे भजन में बाधा होती है, तब हमें आवश्यकता पड़ती है ये वर्णाश्रम व्यवस्था की। तो इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ये 3 घंटे का विचार विमर्श गोष्ठी के लिए कि कैसे हम इन समस्याओं को सुलझा सकते हैं, शास्त्र के अनुसार क्या हमें निर्देश दिए गए हैं। तो आइए हम इस पर थोड़ा ध्यान दें, समय हमारे पास बहुत कम है इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक आप इन सब चीज़ों को देखिए और अंतिम 3रे दिन प्रश्न उत्तर होंगे, तो आज यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हैं तो कृपया आप उसको लिख लीजिए, आज शायद हमको समय नहीं मिल पाए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो संसार में बहुत अलग अलग लोग अलग अलग श्रद्धा रखते हैं, अलग अलग चेतना के लोग हैं, उनका चेतना का स्तर क्रमिक रूप से निम्न, किसी का निम्न, उच्चतर उच्चतर, इस प्रकार से है। तो हम यहाँ पर उन लोगों के लिए बात करने जा रहे हैं जिनकी श्रद्धा शास्त्रों में है, जिनकी श्रद्धा है कि भगवान हैं और हम उन पर निर्भर हैं और वो शास्त्रों के माध्यम से हमें निर्देश देते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो उससे निम्न है उन्हें और समय लगेगा इस स्तर पर आने के लिए। तो चैतन्य चेतामृत में कहा गया है माया मुग्धेर जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीव कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण। तो जो माया मुग्ध जीव हैं यानी हम सभी, स्वतः उनको कृष्ण ज्ञान नहीं होता है, स्वतः उनको भगवत प्रेम तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ कैसे चलना है वो भी उनको स्वयं नहीं पता लग सकता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कृपा कर हमारे लिए वेद और वेद पुराण इत्यादि की रचना करते हैं। तो फिर भगवान जो ये सब शास्त्र की रचना किए हैं उसमें क्या उपाय बताए हैं सभी जीवों की प्रगति का, जो भी शास्त्रों में विश्वास रखते हैं उनकी प्रगति का क्या उपाय बताए हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम के अंदर उद्धव को भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। उद्धव जी एक प्रश्न पूछते हैं कि आप कहीं कहीं बताया गया है कि जो व्यक्ति अपना कर्म पालन नहीं करता है वर्णाश्रम का, वो आपको प्रसन्न नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ हम सुनते हैं ऐसे वाक्य है कि ये सब भक्तों के लिए वर्णाश्रम उसको छोड़ देना चाहिए, तो ये सब विरोधाभास लगता है, तो कृपया आप इसको बताइए कि सच्चाई क्या है। तो उसके उत्तर में भगवान ये श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता निर्णाम श्रयो विदित्सया ज्ञानम कर्म च भक्तिश्च नोपायो अन्योस्ति कुत्रचित। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके, अतः मैंने प्रगति के तीन पथ प्रस्तुत किए हैं, कर्म, ज्ञान एवं भक्ति। इसके अतिरिक्त प्रगति का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तीन मार्ग प्रशस्त किए हैं भगवान ने, और इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है प्रगति का, चाहे वो भारतीय है, चाहे अमेरिकन है, चाहे वो स्त्री है, चाहे पुरुष है, सबके लिए प्रगति के तीन मार्ग हैं। जो ये तीन मार्ग से बाहर हैं, वो लोग अभी प्रगति के पथ पर शुरू नहीं किए। तो ये तीन मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो क्या है कर्म, क्या है ज्ञान और क्या है भक्ति, तो भगवान इसका विश्लेषण करते हैं। निर्विण्णाम ज्ञान योगो न्यासिनाम निह कर्मसु तेष्व निर्विण्ण चित्तानाम कर्म योगस्तु कामिनाम। अर्थात इन तीनों मार्गों में ज्ञान योग उनके लिए है जो भौतिक जीवन से पूरी तरह उब चुके हैं, और इसलिए सामान्य काम्य कर्म में उनकी कोई रुचि नहीं है। जो अभी भौतिक जीवन में से नहीं उबे हैं और जिनकी अनेक अनेक भौतिक इच्छाएं हैं, उन्हें कर्मयोग पथ का अनुसरण करना चाहिए। तो हम अक्सर सुनते हैं भगवद गीता के अंदर कर्मयोग बताया गया है, भक्ति योग बताया गया है, ध्यान योग बताया गया है, जिसको जो अच्छा लगे कर लो। जब मैं सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन शुरू किया तो विवेकानंद की पुस्तक पढ़ी, तो उसमें एक पुस्तक अलग कर्मयोग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, एक राजयोग के बारे में, एक भक्ति योग के बारे में, और उसका आशय ऐसा निकलता है कि ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। और फिर उससे हम देखते हैं आज समाज में एक भ्रांति है, या तो मत तथो पथ, सब पथ है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है, सब एक ही जगह मिलते हैं आकर के। और यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये तीनों रास्ते दिए हैं, तो तीन रास्ते भगवान कह रहे हैं, यहाँ तीन रास्ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसको जो मन में आए वो रास्ता अपना सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भी रास्ता अपनाएंगे तो परिणाम एक ही होगा, ऐसा नहीं है। तो ये तीन अलग अलग मार्ग समाज में व्यक्ति के अधिकार के अनुसार हैं, सब व्यक्तियों का एक ही अधिकार नहीं है, सब व्यक्तियों की एक ही योग्यता नहीं है, इसीलिए योग्यता के अनुसार ये तीन मार्ग हैं। एक प्रथम कक्षा, एक जो एक बच्चा है तो उसको प्रथम कक्षा के अनुसार गणित सिखाया जाता है, जो पांचवी कक्षा का है उसको पांचवी कक्षा के अनुसार गणित सिखाया जाता है। तो गणित विषय है, लेकिन योग्यता के अनुसार उसको वो विषय का स्तर समझाया जाता है। उसी प्रकार से ये कर्म, ज्ञान और भक्ति अलग अलग अधिकार के स्तर पर है। तो यहां पर भगवान बोले कि कर्म किसके लिए है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ये भौतिक जगत मेरे भोग के लिए बनाया गया है, भगवान ने बनाया है, भगवान है, हमसे ऊपर कोई है और सब नियंत्रण वही कर रहे हैं, और लेकिन इस पूरे जगत का हेतु है मेरा इंद्रिय सुख, हमारा सबका इंद्रिय सुख मिलकर के, और ये इंद्रिय सुख के लिए जरूरी है कि हम भगवान के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनका पालन करें। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं हो सकते, इस जीवन में सुखी नहीं हो सकते, और फिर स्वर्ग कैसे जाएंगे। अगर जीवन में सुख प्राप्त करना है तो ये बहुत ही जगह ठीक है, इंडिया ठीक है, इंडिया से अच्छा अमेरिका और अमेरिका से भी अच्छा स्वर्ग लोक, तो इसलिए बहुत सारे नियम शास्त्रों में, उन सबका नियम का हम पालन करेंगे और फिर स्वर्ग लोक जाएंगे। ऐसे लोगों की मान्यता के अनुसार भगवान है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, उनका हेतु क्या है, उनका हेतु है हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना, ये उनका हेतु है, इसलिए वो भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन किस मान्यता से, किस दृष्टिकोण से, कि भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान हमें फल देंगे। ऐसे लोगों को कर्म मीमांसक भी बोलते हैं, जो ऐसा विचार रखते हैं कि अगर हम अपना कर्म अच्छे से करेंगे तो भगवान जो इन कर्मों को बनाए हैं वो भी इन कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए यदि हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो विवश होंगे हमें इन अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम देने के लिए। इन्हें कर्मकांडीय बोलते हैं, ऐसे लोगों को कर्मकांडीय, मीमांसक, ये सब इस कैटेगरी के लोग हैं। तो वो भी उपासना करते हैं, विष्णु की उपासना भी करते हैं, साथ साथ देवी देवताओं की उपासना भी करते हैं। वो विष्णु को भी एक अन्य देवताओं के समान मानते हैं। और केंद्र में आशय है भौतिक इच्छाएं, और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं की पूजा। तो बहुत से लोग इस स्तर पे हैं, उनके लिए ये कर्म का मार्ग है जिसके अंदर अलग अलग सेक्रीफाइस, अलग अलग यज्ञ, अलग अलग विधि का पालन करना है, अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करना है। तो जो वेद हैं, चार वेद, अधिकतर उसके जो संदेश हैं वो ऐसे लोगों के लिए हैं। इस भाग को हम कर्मकांड भाग कहते हैं शास्त्रों का। तो अधिकतर जो वेद के अंग हैं वो इनके लिए हैं। इसलिए भगवान भगवद्गीता में क्या कहते हैं, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जना। तो भगवान यहाँ पर इन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो वेदों के अंदर जो ये तीन गुणों के अंदर जो ज्ञान है उससे ऊपर निकलो, जो वेदों में भक्ति का ज्ञान है वहां पर आओ। तो ये कर्मकांड के अंदर ये लोग हैं। फिर जब व्यक्ति कर्म करता है नियमों के अनुसार, देवताओं की पूजा करता है, विष्णु की उपासना करता है, तो उससे उसको भौतिक सुख समृद्धि तो प्राप्त होती है, और साथ साथ कभी कभी नरक भी मिलता है। जैसे किसको मिला उदाहरण, नृग महाराज। तो बहुत बड़े कर्मी थे, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि करते थे, लेकिन गलती से एक गाय किसी को दान दिया और फिर वही गाय दूसरे को दान दे दिया, अनजाने में गलती हो गया, उसकी वजह से छिपकली बनना पड़ा। तो ये कर्म मार्ग ऐसा है, कभी स्वर्ग तो फिर कभी सुअर की योनि, ये चलता रहता है। तो ऐसा चलते चलते कर्म करने से परिणाम होता है ज्ञान। इसलिए भगवान कहते हैं भगवद्गीता में कर्म सर्व ज्ञाने परिसमाप्यते। कर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो है ज्ञान की प्राप्ति। अर्थात ऐसे व्यक्ति को धीरे धीरे कई जन्मों के बाद धीरे धीरे ज्ञान आता है कि मैं स्वर्ग गया बहुत बार, फिर वापस यहाँ आया, तो आखिर ये क्या बेकार का चक्कर है, स्वर्ग जाना नर्क आना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है। तो आखिर सत्य क्या है, ये तो सुख सुख नहीं है, ये बहुत ही जगत तो दुखालयम है, ये तो अशाश्वतम है। तो ये जो जान, ये जब ज्ञान जब उपस्थित होता है तब वो व्यक्ति ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं। अभी वो ज्ञान मार्ग में, अभी फिर वो उपनिषदों शास्त्रों के जो उपनिषद भाग है उसको पढ़ना और उसको समझना शुरू करते हैं, जिसमें जड़ और चेतन में अंतर बताया गया है। ये शरीर तो जड़ है, ये सब भौतिक संसार के अंदर विषय वस्तु जड़ है, और आत्मा को कभी ये जड़ वस्तु संतुष्ट नहीं कर सकता, इसलिए अभी हमें मुक्ति चाहिए। जो पहला कर्म मार्ग है उसके अंदर त्रैवर्गी की धर्म है, धर्म अर्थ काम, उनका जो लक्ष्य है वो तीन स्तर पर है, धर्म अर्थ काम। तो धर्म अर्थ काम से जो लोग ऊब गए हैं उनके लिए फिर है मोक्ष। अभी उन्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा चाहिए, वो पूरा गुजराती में क्या कंटाल गए हैं, कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, इतना फ्रस्ट्रेटेड है उनको कोई होप ही नहीं है, दे वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड मतलब ये सामान्य सुसाइड नहीं, स्पिरिचुअल सुसाइड, कि जो अपनी सत्ता है उसी को ही वो खत्म कर देना चाहते हैं, वो अपने को विलीन कर देना चाहते हैं ब्रह्म में। परम सत्य उनके अनुसार ब्रह्म है, जो सभी इस भौतिक जगत से पूरा उल्टा है, विपरीत है, उसमें अपने को मिला देना चाहते हैं। तो ये भगवान बोलते हैं कि जो लोग ज्ञान उनके लिए है, जो लोग पूरे फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और जिनको भौतिक आशाएं अभी भी हैं उनके लिए कर्म है। तो फिर भगवान बताते हैं, यदृच्छया मत कथादौ जात शुद्धस्तु यह पुमान ना निर्विन्नो नातिशक्तो भक्ति योगस्य सिद्धः। यदि येन केन प्रकारेण सौभाग्यवश कोई मेरी कथा के श्रवण एवं कीर्तन में रुचि उत्पन्न कर लेता है, वह ना तो जीवन से अत्यंत निराश नहीं आसक्त होता है, ऐसे व्यक्ति को मेरी प्रेमा भक्ति से सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। तो जो लोग किसी कारण येन केन प्रकारेण, जिनको श्रद्धा उत्पन्न हो गई है भगवान के कथा में कि भगवान नित्य हैं, भगवान का धाम नित्य है, भगवान का नाम नित्य है, भगवान के साथ हमारा संबंध नित्य है, जिनके अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है अनेक अनेक जन्मों के भक्तियोन्मुखी सुकृति से, भक्तों की विशेष कृपा से, दो तरीके हो सकते हैं इसके, इन दोनों ही तरीके से में से कोई भी किस तरह से, ये इनके इन प्रकार हैं जिनके अंदर ये श्रद्धा उत्पन्न हो गई है भगवान की कथा में। भगवान की कथा मतलब ये कथा कि भगवान नित्य है, भगवान का साथ हमारा संबंध नित्य है, जीवर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। ये श्रद्धा जिसके हृदय में उत्पन्न हो गई है ना, तो वो इस भौतिक जगत से इतना कंटाला हुआ है कि उसे कोई उपाय नहीं है। उसे उपाय दिख रहा है कि भगवान की भक्ति सेवा उपाय है, वो भगवान के धाम में रह सकता है भगवान के नित्य भक्त के रूप में। और इस भौतिक जगत में उसकी इतनी आसक्ति नहीं है कि वो पागलों की तरह से कर्म कांड के लिए प्रेरित होकर स्वर्ग में जाने की आकांक्षा करे। वो समझता है कि ये भौतिक सुख उसे सुखी नहीं बना सकते। ऐसे भक्तों का जिक्र हुआ है जिनके लिए ये तीसरी पद्धति है, तीसरा मार्ग है जो है भक्ति का मार्ग। तो अभी हम कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीन मार्ग हमने अलग अलग लोग बताए कि किसका अधिकार किसके लिए है। तो अभी ये कर्म, ज्ञान और भक्ति में आपस में रिलेशनशिप क्या है? तो सर्वप्रथम तो कर्म और ज्ञान का अंतिम उद्देश्य है भक्ति तक पहुंचना। हरे कृष्णा, फॉर्चुनेट। तो कर्म का हमने बताया कि उसका लक्ष्य है ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान का लक्ष्य है, ज्ञान मार्ग का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। तो धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष। तो चाहे वो कर्म है चाहे ज्ञान है, अगर वो भक्ति तक नहीं पहुंचता तो वो व्यर्थ है। इसलिए भागवतम में कहा गया है, धर्म सुनिष्ठितम पुंसम विश्वक्सेना कथा सुय ना उत्पादयतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कर्मी है, ज्ञानी है, यदि वो कर्म और ज्ञान से विकसित होकर के भक्ति तक नहीं पहुंचता तो वो उसका सब कर्म सब ज्ञान व्यर्थ है। तो इसको भागवतम में इस प्रकार से बताया गया है, भौतिक संसर्ग से रहित आत्म साक्षात्कार का ज्ञान भी यदि भगवान की धारणा से रहित हो तो शोभा नहीं देता। तो सकाम कर्मों जो स्वतः कष्टदायक एवं नश्वर होते हैं उनकी तो उपयोगिता ही क्या है यदि वे भगवान को अर्पित न किए जाएं। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भगवान ने जो व्यवस्था की है वो ये क्रमिक विकास की व्यवस्था की है, कर्म ज्ञान उससे आकर के अंत में भक्ति में आना है। यदि भक्ति तक नहीं पहुंचे तो सब व्यर्थ है, क्योंकि वो कर्म से तो हमें केवल ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान से केवल होगा तो क्या प्राप्त होगा, मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और जब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकता। सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रत्येता येनात्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा का एकमात्र सुख केवल कृष्ण प्रेम में है, उसके अलावा वो मुक्ति भी व्यर्थ है। तो इसलिए अंतिम उसका लक्ष्य भक्ति है। और फिर दूसरा विषय है कि जो कर्म और ज्ञान है इनसे मिलने वाला जो परिणाम है वो बहुत तुच्छ है और वो भक्ति पर आश्रित है। कर्म से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो तभी होता है जब उस कर्म में थोड़ी सी भक्ति मिश्रित हो। ज्ञान से मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब उसमें थोड़ी सी भक्ति मिश्रित हो। इसलिए जो व्यक्ति कर्मी है अगर वो विष्णु की आराधना नहीं करता, अगर वो अपने कर्मों के फलों को विष्णु को अर्पित नहीं करता, तो उसको जो ये कर्म का फल है यानी ज्ञान की प्राप्ति वो भी नहीं होगी। यदि ज्ञानी व्यक्ति जो उपनिषदों का अध्ययन कर रहा है, वेदांत का अध्ययन कर रहा है, जो मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन यदि वो साथ साथ थोड़ी भक्ति नहीं करता तो उसकी वो ज्ञान उसको मुक्ति प्रदान नहीं करेगा। इसलिए कर्म और ज्ञान भक्ति पर आश्रित हैं, उसका वो थोड़ा सा जो फल है वो भी देने के लिए। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्ण भक्ति होय अभिधेय प्रदान भक्ति मुख्य निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। भगवान की भक्ति सेवा जीव का प्रधान कार्य है। ये तीनों साधनाओं में मुख्य साधना है भक्ति। बद्ध जीव की मुक्ति के अनेक साधन है, कर्म, ज्ञान, योग एवं भक्ति, किंतु सभी भक्ति पर आश्रित है। अब इसमें एक शब्द आया योग, हमने तीन की बात की, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो योग क्या है? तो ये अष्टांग योग जो कर्मी जन है उनका एक स्तर है, जब विकसित होकर के उनकी चेतना थोड़ी विकसित होती है तो या तो वो अष्टांग अलग अलग प्रकार की योगी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए परमात्मा के ऊपर अष्टांग योग से ध्यान करते हैं, या फिर परमात्मा के ऊपर ध्यान करके ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, तो वो लोग ये योगी कहलाते हैं। तो ये भी योग और ज्ञान में बहुत अधिक अंतर नहीं है, योग और ज्ञान वो एक ही साथ मिश्रित है। तो यहां बताया गया है कि वो सभी भक्ति पर आश्रित हैं। और फिर एक अन्य श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, ऐ सब साधन अति तुच्छ बल, कृष्ण भक्ति बिना ताहा दीते नारे फल। कृष्ण भक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार के अन्य सभी साधन तुच्छ और निर्बल हैं। कृष्ण भक्ति के बिना ज्ञान एवं योग उनका वांछित फल नहीं दे सकते। तो ये दिस इज द अल्टीमेट एम, भक्ति बिना कुछ नहीं दे सकते। तो लेकिन जो भक्ति है वो बिना कर्म और ज्ञान के ही वो सब फल प्रदान कर सकता है। जो इफ वी डिस्टर्ब द क्लास, आई थिंक वो कहाँ है राधेश प्रभु, कौन सा श्लोक है वो सहन करना चाहिए ना, ताम तितिक्षस्व भारत। सो प्लीज टॉलरेट, डोंट डिस्टर्ब, जस्ट क्योंकि सबका ध्यान भी हो जाएगा थोड़ी देर बैठिए। ओके, लेकिन जो भक्ति है वो बिना कर्म और ज्ञान के अपने आप वो फल दे सकती है जो कर्म और ज्ञान देते हैं। सेकेंडरी वो उसका मुख्य हेतु नहीं है, वो सेकेंडरी उसका उपफल है। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति विने, कृष्णोन मुख्य सही मुक्ति हय बिना ज्ञाने। केवल ज्ञान भक्ति के बिना मुक्ति भी प्रदान नहीं कर सकता, दूसरी तरफ ज्ञान के बिना ही कृष्ण भक्ति से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो भक्त कभी मुक्ति की आशा नहीं करता, भक्त कभी स्वर्ग जाने की आशा नहीं करता, लेकिन यदि कहीं थोड़ी बहुत कोई आशा किसी के मन में हो भी जाए भक्त के मन में, तो उसके लिए उसे कर्म और ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्ति अपने आप सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट के रूप में देती है। जैसे कोई कंपनी होती है, एक चीज प्रोडक्शन करती है, उसके साथ साथ में बहुत सारी चीजें अपने आप बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। तो ऐसे ही ये मुक्ति और ये सब तो बाई प्रोडक्ट के रूप में भक्ति से मिलता है। इसलिए बिल्व मंगल ठाकुर क्या कहते हैं, ये कि भक्त के लिए तो ये जो मुक्ति है वो दोनों हाथ जोड़े उसके द्वार पर खड़ी रहती है उसकी सेवा करने के लिए। तो उसे उससे कोई सरोकार नहीं है मुक्ति से, लेकिन ये सब स्वाभाविक रूप से उसकी सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। तो कर्म और ज्ञान भक्ति पे आश्रित है अपने तुच्छ फल के लिए, लेकिन भक्ति ना तो कर्म और ज्ञान पे आश्रित है बल्कि उन सभी के फल बिना कर्म ज्ञान के अपने आप ऐसे ही मिल सकते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आगे, ज्ञान वैराग्यादि भक्ति र कभु ना अंग, अहिंसा यम नियमादि बोले कृष्ण भक्त संग। ज्ञान एवं वैराग्य भक्ति सेवा के लिए आवश्यक नहीं है। भक्ति के लिए ये सब ज्ञान कर्म करना ये सब आवश्यक नहीं है। बहुत लोग ऐसे धारण रखते हैं, जब तक कोई ब्राह्मण नहीं होगा तब तक वो भक्त कैसे बनेगा, जब तक जिसने संस्कार ये सब जाति में जन्म ले लिया है, जिसने सब कर्मकांड नहीं किया है, जिसने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है, तब तक वो कैसे भक्त बनेगा। तो ऐसा नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य ये कोई भक्ति के मुख्य अंग नहीं है, बल्कि जो अहिंसा यम नियम है ये सब सद्गुण तो स्वभावतः कृष्ण भक्त के साथ रहते हैं, ऑटोमेटिकली उसके साथ में ये होते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति कर्म और ज्ञान पर आश्रित नहीं है, और भक्ति ही केवल कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है, कर्म नहीं कर सकता, ज्ञान नहीं कर सकता। कितना भी कोई कर्म करे, कितना भी कोई ज्ञान करे, लेकिन उससे हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। सेविंग द बैटरी है, ओके। तो अभी इस प्रकार से हमने देखा कर्म ज्ञान और भक्ति में क्या भेद है। तो अभी जो भक्ति है, जब हम भक्ति की बात करते हैं, अभी हम भक्ति पर आ रहे हैं कि हमने अधिकार की दृष्टि से देखा जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई है कि भगवान का नाम नित्य है, भगवान का धाम नित्य है, भगवान के नित्य दास हैं, तो उनके लिए कर्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल भक्ति चाहिए, उनके लिए केवल मार्ग है भक्ति। लेकिन अभी भक्ति के अंदर भी दो स्तर हैं। तो वो क्या क्या स्तर हैं? एक है साधना भक्ति और एक है भाव और प्रेम भक्ति, वो एक तरफ, और एक तरफ साधना भक्ति। तो साधना भक्ति यानी हम शास्त्र के अंदर बताए गए नियमों के अनुसार या जो ब्रजवासी हैं भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका पद अनुसरण करते हैं, जो भक्ति करते हैं वो साधना भक्ति कराते हैं, अपने इंद्रियों और मन को भगवान की सेवा में नियोजित करते हुए जो भक्ति होती है वो साधना भक्ति कहते हैं। और उस साधना भक्ति के अंदर भी दो अंग हैं, दो भाग हैं, पहला है वैदिक भक्ति और दूसरा है रागानुगा भक्ति। तो जिन भक्तों, अभी हम केवल भक्तों की बात कर रहे हैं, कर्मी और ज्ञानियों को छोड़ दिए हैं, तो जिन भक्तों के हृदय में अभी काम वासनाएं हैं वो उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, वो उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। लेकिन हम सभी स्वीकार कर सकते हैं, हम सभी का अनुभव है कि हम सब जानते हैं कि भौतिक इच्छाएं हैं, नहीं चाहते हुए भी रहती हैं, है ना। एकदम से ऐसा नहीं कि हम पहले दिन इस कौन में आए सुने ये सब भौतिक इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए और अगले दिन सुबह उठे और कोई भौतिक इच्छा नहीं थी, तो ऐसा नहीं होता है। तो भौतिक इच्छाएं रहती हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उसे निकलने का, प्रार्थना कर रहे हैं। तो जो भक्त इस स्थिति में हैं, जिनकी अभी भी कामनाएं हैं, जो वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन अभी हैं, यानी आसक्त हैं इस भौतिक जगह से, यानी कि भौतिक जो पर्यावरण है वो उनको प्रभावित कर रहा है उनकी साधना को, उनकी हरिनाम को, तो ऐसे भक्तों के लिए जरूरी है कि वो विधि विधान के अनुसार भगवान की सेवा करें। अगर विधि विधान का पालन नहीं करेंगे तो स्वतः तो उनकी इच्छा है नहीं, स्वतः उनकी इतनी प्रगाढ़ इच्छा नहीं है, मन और इत्यादि सब उनके कंट्रोल में नहीं है, इस प्रकार से स्वतः वो भगवान की सेवा के लिए प्रेरित नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि वो नियम के अनुसार भगवान की सेवा करें। तो ऐसे भक्तों के लिए है वैधि मार्ग। तो इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, काम त्यजी कृष्ण भजे शास्त्र आज्ञा मानी, देव ऋषि पित्तादि केर कभू नहे ऋणी। तो जो भक्त सभी कामनाओं को त्याग कर कृष्ण को भजते हैं, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार केवल कृष्ण को भजन कर रहे हैं, कोई हृदय में कामना नहीं है, सब खत्म हो गया है, वो देवता ऋषिगण पित्र इत्यादि किसी के ऋणी नहीं है, उनका और कोई सामाजिक कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं रह गया है। इसी के विषय में इसका, यदि कोई व्यक्ति समस्त भौतिक इच्छाओं का परित्याग कर शास्त्र नियमानुसार पूर्ण रूप से भक्ति सेवा में संलग्न हो जाए तो वह देवताओं ऋषियों एवं पूर्वजों का ऋणी नहीं रहता। इसी विषय में एक और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, देव ऋषि भूताप्तनिणाम पितृणाम नायम किंकरो ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मीन्स ओनली डेंजर इज की अगर पावर आएगा तो वो उड़ जाएगा ऐसा बैटरी। ओके ठीक है। हे राजा, जिसने अपनी समस्त जिम्मेदारियों का परित्याग कर मुकुंद जो सभी को आश्रय प्रदान करने वाले हैं उनका पूर्ण रूपेण आश्रय ग्रहण किया है, वह देवताओं महान ऋषिगण जनसाधारण संबंधियों मित्रों मानव जाति यहां तक कि पूर्वजों का भी ऋणी नहीं है, क्योंकि ये सभी जीव भगवान के अंश हैं। अतः जो भगवान की सेवा करता है उसे जीवों की अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। तो स्पष्ट है कि जो भक्त इस स्तर पर है रागानुगा स्तर पर, जिनके अभी भौतिक इच्छाएं सभी शेष खत्म हो गई हैं, कोई शेष नहीं रही है, स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा के लिए वो उनका हृदय उमड़ता है, ऐसे लोगों के लिए कोई वर्णाश्रम के नियम इवन भक्ति के नियमों को वो स्वाभाविक रूप से अनुशीलन करते हैं, उनके लिए वो नियम के अनुसार भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भक्त भी इस स्तर पर नहीं है उन सबको आवश्यक है कि वो वैदिक भक्ति का आश्रय ग्रहण करें, वो नियमों के अनुसार आश्रय ग्रहण करें, नियम के अनुसार भक्ति करें। तो जो भक्त लोग वैदिक स्तर पर हैं उनके लिए ये कक्षा है, उनके लिए बात होने जा रही है, जो वैदिक साधक है, वैदिक साधक वैदिक भक्ति के अंतर्गत साधना भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए भक्तिवान ठाकुर कहते हैं, साधना काले ये पर्यंत हृदय काम आचे से पर्यंत वर्णाश्रमादि धर्म उपेक्षा ठाके। जब तक साधना भक्ति के अंतर्गत हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं, साधना भक्ति के अंतर्गत जिनकी इच्छाएं नहीं है वो रागानुगा, साधना भक्ति के अंतर्गत जिनके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं उनके लिए वैदिक मार्ग और वैदिक मार्ग के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म। तो भक्तिवान ठाकुर इस के आधार पर समझा रहे हैं कि जिन भक्तों की भौतिक इच्छाएं हैं या इच्छाएं इन द सेंस की सामाजिक स्थिति भौतिक स्थिति प्रभावित कर रही है उनकी भक्ति को, उनके लिए जरूरी है वर्णाश्रम के नियमों को पालन करना। तो फिर ये क्या है वर्णाश्रम नियम और नवविदा भक्ति। नवविदा भक्ति प्रहलाद महाराज बताते हैं भक्ति के 9 अंग हैं, कौन कौन से हैं, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इस प्रकार से 9 आगे चलते हैं। तो उन दोनों में क्या सामंजस्य है? नाउ दैट स्लाइड आई कैन नॉट शो ना, ओके। तो वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति के 2 प्रकार के नियम हैं। एक है प्राथमिक नियम और दूसरा है माध्यमिक नियम। मैं ही देख सकता हूं, आप लोग नहीं देख सकते, बहुत मेहनत किया दामोदर प्रभु ने सब स्लाइड बनाने में, दुर्भाग्यवश। तो जो प्राथमिक नियम है उनके अंदर आता है नवविदा भक्ति। तो प्राथमिक नियम और माध्यमिक नियम, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। तो प्राइमरी रूल्स हैं नवविदा भक्ति, जिसके बारे में पूरा श्रवण कीर्तनम कैंप फोकस्ड है। इस्कॉन में आने से अधिकतर हम जिसके बारे में सुनते आते हैं वो है ये प्राथमिक भाग, प्राथमिक नियम। इसके बारे में हम इस सेमिनार में अधिक चर्चा नहीं करेंगे, वो हमने पहले ही शुरुआत में बोला हरर नाम हरर नाम एव केवलम, दैट इज द एसेंस। अभी हम यहां ज्यादा बात करने वाले हैं माध्यमिक नियमों की, सेकेंडरी रूल्स, जो इस प्राथमिक नियमों को सपोर्ट करते हैं, नवविदा भक्ति को हेल्प करते हैं, इन नियमों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो प्राथमिक, ये जो माध्यमिक नियम हैं, इनके फिर 3 वर्ग हैं। एक है स्वयं से संबंधित, दूसरा है जीवन उपरांत यानी पाप और पुण्य से संबंधित, और तीसरा है समाज संबंधित। यानी अभी हम भौतिक स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, वो नियम जो हमारी भौतिक स्थिति को अनुकूल बनाते हैं नवविदा भक्ति का पालन करने के लिए। तो उन नियमों के अंदर 3 वर्ग हैं, एक अपने शरीर और मन से संबंधित, दूसरा समाज से संबंधित, और तीसरा जो आने वाले जीवन में भी, आने वाले जीवन को प्रभावित करेंगे ऐसे नियम। तो जब हम स्वयं से संबंधित नियम का बात करते हैं तो इसमें शरीर और मन, ये 2, तो इसके लिए शास्त्रों में अलग अलग नियम बताए गए हैं। जैसे हमको नियमित रूप से आहार लेना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आयुर्वेद है। फिर उसके बाद स्नान करना, स्वच्छता का पालन करना, आज बासुकोश प्रभु उसके विषय में कुछ बता रहे थे। तो वो सब जो शरीर संबंधित, और फिर मन, चिंतन, अलग अलग विषय जिससे कि वो ब्रेन डेवलप होता है, चिंतन करने के लिए तैयार होता है, तो वो सब विषय, वो सब तरीका। फिर बीमार हो जाएं तो उसके लिए इलाज करना, ये सब जो चीजें हैं शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो नियम है वो आते हैं शरीर और एवं मन संबंधित माध्यमिक नियमों के अंतर्गत। फिर दूसरा है जीवन उपरांत संबंधी, यानी पाप और पुण्य। तो भक्तों के लिए पाप और पुण्य से तो हमको ऊपर उठना है, तो वो जो पाप और पुण्यों में फंसे हुए हैं वो कर्मी लोग हैं, वो कर्मकांडी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भक्त बनने का मतलब है जो पुण्य है उसको नहीं करना है, उससे विपरीत करना है, वो नियमों को पालन नहीं करना है, वही भक्ति है, ऐसा भी नहीं है। तो भक्त सामान्य रूप से जो पाप कर्म है वो नहीं करता है, और जो सामान्य रूप से जो पुण्य है वो करता है, अर्थात सतुगुण, हम आज बात कर रहे थे सतुगुण में रहना है। तो सतुगुण में रहने के लिए ये सब पाप और पुण्य का विचार है, हमारी संस्था के अंदर 4 पाप कर्म नहीं करना है, तो ये सब विचार है ना। तो क्या है वो पुण्य कर्म? तो कुछ मुख्य पुण्य कर्मों को हम यहां पर देखेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग सोचेंगे तो हम सब लोग सोचते हैं कि ये सब बेकार है। पीड़ित व्यक्तियों की सहायता वृद्ध लोगों की सेवा, सुपात्रों को दान, अतिथि सेवा, स्वच्छता, उत्सव, व्रत, जानवरों की रक्षा, संतान उत्पत्ति, सद्व्यवहार, क्षमा, ईमानदारी, तो ये सब कार्य हैं जो भक्तों से भी वांछनीय है। विशेष रूप से जो भक्त समाज के अंदर सामाजिक जीवन जी रहे हैं, गृहस्थ भक्तगण जो सामाजिक जीवन जी रहे हैं, जो ब्रह्मचारी और सन्यासी हैं वो भी कुछ हद तक तो शरीर पर निर्भर हैं। क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचारी खाना नहीं खाते? क्या बिना खाने के वो भजन करते हैं? नहीं, उनको भी खाना चाहिए, तो वो भी कुछ हद तक इससे बंधे हैं। हालांकि उनके लिए विस्तृत नियम उनके ऊपर लागू नहीं होते, लेकिन विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त हैं उनके ये समाज के जो ये जो नियम हैं ये सब उनको ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब पुण्यकर्म हैं, विशेष रूप से इसमें कई हैं, अतिथि सेवा। तो हम देखते हैं गृहस्थ भक्त, तो उनका ये कर्तव्य है अतिथियों की सेवा करें, पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करें, उनको हेल्प करें, ये सब समाज का अंग है। इसके विषय में हम देखेंगे भक्तियां सरस्वती महाराज क्या कहते हैं, किस प्रकार से करना। और फिर पाप कर्मों का विचार है, ये सब नहीं करना चाहिए पाप कर्म, जैसे हिंसा, निर्दयता, धोखा। तो ऐसा नहीं, हम तो भक्त हैं, हमको लाइसेंस मिल गया किसी को भी धोखा दें, क्योंकि हम तो भक्त बन गए, अब ईमानदारी की जरूरत नहीं, हम तो इससे ऊपर उठ गए। अगर आप पुस्तक वितरण करने में और विशेष रूप से केवल शुद्ध रूप से, जैसे तिरुमंगई आलवार श्रीरंगम मंदिर बनाए केवल डकैती करके, तो अगर हम गुरु के आदेश पर और बिना किसी भौतिक इच्छाओं से केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ऐसा कार्य कर रहे हैं, चोरी डकैती भी कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि 1% भी उसमें हमारा इंद्रिय सुख इन्वॉल्व है तो वो पाप कर्म कहलाएगा, यदि हम धोखा दे रहे हैं। तो इसलिए धोखा, ऐसा नहीं कि भक्तों लाइसेंस मिल गया है कुछ भी करने का। नशा, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, नास्तिकता, आलस्य, झूठ, अगेन झूठ, बड़ों का अपमान। तो ऐसा नहीं है कि हाँ ये वृद्धों की सेवा करना, ये तो कर्मकांड के अंदर आता है, हम तो भक्त बन गए अभी अभी, जो हमारे माता पिता है उनको हम लोग, जो बूढ़े हो गए या जो वृद्ध भक्त हैं उनको कोई स्पेशल केयर की जरूरत नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। स्वार्थ, अस्वच्छता, दुर्व्यवहार, मिथ्या वैराग्य, ये सब पाप कर्मों के अंदर आता है। तो इस सबके विषय में भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं, एक बार भक्तिदान सरस्वती महाराज एक मंदिर में गए, उनके साथ गृहस्थ भक्त भी थे और सन्यासी भक्त भी थे। तो वहां पर कुछ भिखारी लोग बैठे हुए थे, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, तो उन्होंने देखा उनके गृहस्थ भक्त ने किसी ने एक पैसा भी किसी भिखारी को नहीं दिया। तो भक्तिदान सरस्वती महाराज ने सबको इकट्ठा करके ये बोला, शिला ये भक्ति सिद्धांत वैभव पुस्तक में से है, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सिखाया कि वैष्णवों विशेषकर गृहस्थ भक्तों का एक कर्तव्य है गरीबों को यथोचित दान, प्रसाद वितरण करना गृहस्थ भक्तों के लिए का अनिवार्य कर्तव्य है। तो हम गरीब लोग हैं, यदि हम देखें कि वो हम उसको पैसा देंगे और जाके उससे वो बीड़ी सिगरेट लेगा तो वो अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई है जो गरीब है, जो दुखी है, तो उसको हम प्रसाद देना वो कर्तव्य है, विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों का। हालांकि दीन दुखियों की यह स्थिति उनके कर्मों के अनुसार है, फिर भी दीन दुखियारे भगवान की संतान हैं, अतः उनकी मदद करना गृहस्थ भक्तों का और अन्य का भी कर्तव्य है जिनके पास पर्याप्त धन संपत्ति है। फिर आगे भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं, जिस प्रकार एक गृहस्थ उसकी पत्नी, बच्चों एवं संबंधी जनों का पालन पोषण उनके भक्त न होने पर भी भगवान के जन होने के नाते करता है, उसी प्रकार एक गृहस्थ को दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। हमें गरीबों को खिलाना चाहिए, कपड़े इत्यादि अन्य सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए जिससे वे हरि की सेवा कर सके। तो हम लोग कर्मकांड की तरह वो गरीब की सेवा इसलिए नहीं कर रहे कि ये एक पुण्य कर्म है, मुझे इससे स्वर्ग जाने को मिलेगा या मुझे इससे कोई भौतिक सुख प्राप्ति होगा, उस उद्देश्य से नहीं, लेकिन उस उद्देश्य से कि ये व्यक्ति इस सुविधाओं को प्राप्त करके हरि भजन में उसको सहायता मिले, इस उद्देश्य से हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो ये नियम है कि गृहस्थ भक्त घर में खाना खाएं तो खाना खाने से पहले बाहर जाएं और बुलाएं, कोई है भूखा तो आए। तो आवश्यक नहीं है कि विशेष रूप से गरीब लोगों के इलाके में जाकर के फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम किया जाए, वो बात नहीं है। लेकिन ये हर सामान्य गृहस्थ का कर्तव्य है कि वो कोई अगर अतिथि आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, उसको कहीं कोई खाने को नहीं है तो उसको प्रसाद दे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पुण्य कर्म है ये हमारे सामाजिक कर्तव्य के अंदर आता है। तो ऐसा नहीं है कि भक्त हम बन गए तो अभी हमारा कोई सामाजिक कर्तव्य शेष नहीं रह गया है। अगर हम शुद्ध भक्त हैं जिनके हृदय में कोई लालसा नहीं, जो वर्णाश्रम से ऊपर हैं, तो उनके लिए कोई ये नियमों से बंधे नहीं है। नहीं तो हम हैं भक्तिदास जी महाराज कहते हैं, यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस प्रकार से दीन दुखी हैं उनको भी कोई सहायता करने नहीं करेंगे तो हमारा हृदय कठोर हो जाएगा, हमारा हृदय कठोर हो जाएगा और फिर वो भक्ति साधना के लिए भी अयोग्य रहेगा वो कठोर हृदय। तो इस प्रकार से ये पाप कर्मों के बारे में हमने देखा। अभी तीसरा जो स्तर है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंडरी नियम, सेकेंडरी रूल्स, माध्यमिक नियम। पहले हमने देखा शरीर संबंधी, दूसरे देखा पाप और पुण्य संबंधी, और फिर तीसरा है अभी सामाजिक स्थिति के संबंधित वो नियम जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। पूरा समाज किस प्रकार से पाप में ग्रस्त न हो और इस प्रकार से चले कि वो हरि भजन में सहायक हो, इस प्रकार की जो व्यवस्था है समाज की व्यवस्था, जो सेकेंडरी रूल्स हैं इसके संबंधित, उसको हम कहते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था। अभी हम यहां पर पहुंचे हैं, हमारा टॉपिक है मेन वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो उसके अंतर्गत वर्ण है और आश्रम है। यहां पर हम वर्ण और आश्रम की जो माइन्यूट डिटेल्स हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, केवल उसकी ब्रॉड मुख्य रूप से उसकी मुख्य चीजों को देखेंगे। तो वर्ण क्या है और आश्रम क्या है, हम जब इस भौतिक जगत में हैं तो एक शरीर धारण किए हुए, यह शरीर चलता है प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो भी हमें हमारा स्वभाव जो निर्मित होता है और प्रकट होता है, उस स्वभाव के अनुसार समाज को चार वर्णों में बांटा गया है। तो जो प्रकृति के नियम के अनुसार जो हमारा स्वभाव है वो दो प्रकार से निर्मित होता है, एक शारीरिक स्थिति जो हमारी है और एक मानसिक स्थिति। ये दोनों स्थिति को मिलाकर के जो हमारा स्वभाव बनता है वो है आधार वर्ण का। स्वभाव किस पे आधारित है, आप में से कुछ लोग शायद ऑलरेडी निद्रा आ रही है, स्वभाव किस चीज पे आधारित है, शारीरिक और मानसिक स्थिति पर। ये शारीरिक और मानसिक स्थिति जो हमारी होती है अलग अलग, वो किस चीज पर आधारित होती है। कोई व्यक्ति की मानसिक स्थिति है उसको पढ़ना, अध्ययन करना, फिलोसफी दर्शन के अंदर बहुत गहराई में जाना बहुत अच्छा लगता है, उसको पूरा दिन बैठा के पढ़ा लीजिए बहुत उसको अच्छा लगेगा, उसको दूसरों को बताना है सब। एक दूसरा व्यक्ति है उसको बुक खोलती नींद आती है, तो ये अंतर क्यों है मानसिक स्थिति में। एक व्यक्ति है जिसको सेवा करना हो, ऐसे सब हेल्प करना दूसरों को, इस सब में बहुत आनंद आता है। एक व्यक्ति है जिसको हर चीज को वो कैसे सब चीज प्रॉपरली अरेंज होनी चाहिए, सबको सिस्टमाइज करना, मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, इसमें उसको बहुत रुचि है, बहुत उसको अच्छा लगता है। एक व्यक्ति है जिसको हमेशा प्रोडक्शन कैसे हो, पैसा कहाँ से आए, जैसे प्रभुपाद बताते हैं अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, एक सब व्यक्ति जंगल में जाएंगे तो कोई व्यापारी होगा, वो जंगल में जाएगा तो देखेगा लकड़ी है अच्छी लकड़ी है, इसको बेचेंगे तो बहुत पैसा आएगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण जाएगा तो वो देखेगा ये बहुत एकांत जगह है, यहाँ शास्त्र अध्ययन अच्छे से हो सकता है। तो क्षत्रिय जाएगा तो वो देखेगा वहां पर यहाँ पर शिकार कर सकते हैं। तो ऐसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति अलग अलग है। तो ये हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति किस आधार पर बनती है, तो इसको बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मफल, पहले के जीवन में हमारा क्या रहा है, जिसे हम हेरिडिटरी ट्रेट्स कहते हैं, वंशानुगत जो हम प्राप्त करते हैं। तो हर व्यक्ति अपने साथ एक पूर्व जन्म से प्रभावित एक बैलेंस लेके आता है जिसके आधार पर उसकी शारीरिक और मानसिक चीज निर्मित होती है। जिसे हम जीन्स के माध्यम से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब हेरिडिटरी फैक्टर्स हैं। फिर दूसरा है व्यक्ति का जो जन्म लेने के बाद, बल्कि जन्म लेने से पहले भी गर्भदान संस्कार से शुरू होकर के उसे कैसा ट्रेनिंग मिला है, उसे कैसे संस्कार मिले हैं, वो कैसे लोगों के बीच में रहा है, उसके आधार पर भी उसका स्वभाव निर्मित होता है। तो इस प्रकार से स्वभाव निर्मित होने के मुख्य रूप से दो कारण हुए, कौन कौन से? वंशानुगत और हमारी जो ट्रेनिंग है, वर्तमान समय की ट्रेनिंग। तो इसलिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, उसके बाद धीरे 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 जब वो पढ़ाई करता है, तो ये आशा है कि पढ़ाई करने के समय तक जो समाज के वरिष्ठ हैं, परिवार के वरिष्ठ हैं, वो निश्चित कर लेंगे कि ये बच्चा किस स्वभाव का है, और फिर मैक्सिमम जब तक वो अपना काम शुरू करे उससे पहले तक, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ये निश्चित करना है कि वो बच्चा किस स्वभाव का है, और फिर उसको उस स्वभाव के अनुसार आगे फर्दर ट्रेनिंग और उसके जीविकापार्जन का उपाय। तो इस प्रकार से स्वभाव के आधार पर, जो कि जन्म के आधार पर और मतलब पूर्व जन्म के संस्कार के आधार पर और इस जन्म की ट्रेनिंग के आधार पर जो निश्चित हुआ, वो ब्रह्मचार्य के आश्रम तक निश्चित करके फिर व्यक्ति आगे अपना नेक्स्ट आश्रम में प्रवेश करता है। तो इस आधार पर चार वर्ण हैं, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अभी हम लोग यहाँ पर सब डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या भक्तों के अंदर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं? हम तो सब सुनते आए हैं रामा रामानंद राय, वेरी नाइस, हम यहाँ पर सिंपल लिविंग की बात कर रहे हैं और देखिए इसके बिना हम लोग का काम नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो इसके आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार प्रकार के स्वभाव हैं, और चार प्रकार के स्वभावों से के आधार पर हम अपना सभी जो कार्य है हमारा समाज में, कैसे हम तालमेल करेंगे, किस प्रकार का जीविकोपार्जन के लिए क्या उपाय करेंगे, और ये सब इसके आधार पर निश्चित होता है। फिर दूसरा है आश्रम। तो आश्रम क्या है? जीवन में कोई व्यक्ति किस सोपान पर है, उसके आधार पर है आश्रम। तो इज इट स्टार्टिंग? ओके। तो जीवन के सोपान के आधार पर है आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। ये वो आश्रम है, जीवन का वो सोपान है, जिसमें बच्चा उसका स्वभाव क्या है इसको निर्मित कर रहा है, जीवन में उसको क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब समझ रहा है। अभी उसने अपने जीविकोपार्जन का कार्य शुरू नहीं किया है, अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है, शिक्षा ले रहा है। तो जो शिक्षा लेने का जो समय है, दोनों प्रकार की शिक्षा, शास्त्र परमार्थिक और व्यावहारिक, वो समय है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचारी जीवन। तो ये जीवन अलग अलग वर्णों के लिए, अलग अलग समय के लिए हो सकता है, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। फिर जब व्यक्ति का वर्ण निश्चित हो गया, फिर उसके अनुसार वो अभी क्या काम करेगा, क्या जीविकोपार्जन करेगा, क्या उपाय करेगा। तो फिर जब व्यक्ति अगली स्टेज में जाता है, तो अगली स्टेज है गृहस्थ जीवन। तो गृहस्थ जीवन में एंटर होने से पहले उसका वर्ण निश्चित हो जाना चाहिए मैक्सिमम, उससे पहले वो तो बहुत अच्छा है, जिससे कि ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग भी उसके अनुसार ही हो। तो फिर गृहस्थ जीवन मतलब जब वो विवाह करता है, जिसके अंतर्गत विवाह एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें पति पत्नी दोनों वही उद्देश्य हरिनाम, जीवन को इस प्रकार से संयोजित करने के लिए वो आश्रम है, जिसमें वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी इस प्रकार से निभाएंगे जो उनके हरिभजन में सहायता करेंगे। तो ये गृहस्थ आश्रम है, जिसमें संतानोत्पत्ति यानी भगवत भक्तों को यहाँ जन्म देना, और फिर उनको आगे फर्दर ऐसी ट्रेनिंग देना कि उनको दोबारा से ये जन्म मृत्यु के चक्र नहीं देखना पड़े, तो उसके लिए है ये गृहस्थ आश्रम। फिर उसके बाद अभी जब गृहस्थ आश्रम में हम 20 साल 30 साल हो चुके, अभी बच्चे बड़े हैं और अपनी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, और तब तक गृहस्थ आश्रम में जाकर हम भी खुद प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं कि ये भौतिक जीवन कैसे, ये जो इंद्रिय भोग है कैसे निरर्थक है, तो हमारा जो और वैराग्य है इस भौतिक जगत में, जो भोग की कामना है, वो और अधिक धीरे धीरे खत्म हुई है। और खत्म नहीं भी हुई है तो भी पंचो स्वर्दम वनम गच्छेत, 50 साल में तो जाना ही है, चाहे हुई कि नहीं हुई, अच्छा है उससे पहले हो जाए। तो अगर नहीं हुई है तो बाय फोर्स, जैसे विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला, तो वानप्रस्थ, वानप्रस्थ वो स्थिति जिसमें भी व्यक्ति पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को से विराम लेता है और केवल परमार्थिक कार्य के लिए अपना जीवन लगाता है। और फिर उसके बाद में कुछ लोग संन्यास आश्रम ग्रहण करते हैं जिसमें परिवार से पूर्ण रूप से संबंध खत्म, पत्नी से संबंध खत्म, अभी वो केवल भ्रमण करता है जगह जगह और सबको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देता है। तो ये चार आश्रम हैं। तो अभी ये वर्ण में और आश्रम में क्या संबंध है, किस वर्ण के लिए कौन सा आश्रम है, दोनों में आपस में क्या तालमेल है, तो सबसे पहले आता है वर्ण, सबसे पहले निश्चित करना होता है वर्ण। जब वर्ण निश्चित हो गया उसके आधार पर उसका निश्चित होगा आश्रम, इसलिए प्रभुपाद बोले फर्स्ट वर्ण देन आश्रम। अगर वर्ण निश्चित नहीं है तो आश्रम निश्चित नहीं होगा, इसलिए सबसे पहले वर्ण निश्चित करना है। वर्ण निश्चित होगा कैसे, स्वभाव के अनुसार पे, जिसके लिए वंशानुगत देखना होगा और उसकी ट्रेनिंग कैसी हुई है उसके अनुसार उसके गुण देखने पड़ेंगे, और इन सभी गुणों का बखान भगवद्गीता शास्त्रों में सब है, वो हम डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ब्राह्मण के गुण क्या होने चाहिए, क्षत्रिय क्या होने चाहिए, वैश्य क्या होने चाहिए, शूद्र क्या होने चाहिए, इन सब गुण के आधार पर अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अल्टीमेटली उसके गुण क्या क्या विकसित हुए हैं। एक बार वो नेचर मैच्योर हो गई फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैक्सिमम अप टू द एज ऑफ 25 वो नेचर फिक्स हो जाती है, स्वभाव फिक्स हो जाता है, तब तक उसका वर्ण निश्चित हो गया। फिर जब वर्ण निश्चित हो गया उसके बाद उसका आश्रम निश्चित होता है, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसके लिए कौन कौन से आश्रम है, उसके लिए चार आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो क्षत्रिय है उसके लिए कितने आश्रम है, उसके लिए 3 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। जो वैश्य है उसके लिए कितने आश्रम है, उसके लिए भी 3 आश्रम है। जो शूद्र है उसके लिए कितने आश्रम है, उसके लिए 2 आश्रम है, गृहस्थ और वानप्रस्थ। वानप्रस्थ और गृहस्थ सभी के लिए कॉमन है, लेकिन संन्यास आश्रम केवल जो ब्राह्मण है उनके लिए है, जो ब्राह्मण के गुण जिनके अंदर व्यक्त हैं। तो ये संबंध है चार वर्णों में और 4 आश्रमों में, तो इसके अनुसार हमको निश्चित करना है, देखना होता है समाज के अंदर कौन व्यक्ति, क्योंकि आश्रम के अनुसार उसका समाज के अंदर क्या रोल है वो फिक्स होता है। ब्रह्मचारी है तो उसका रोल क्या है समाज में, सन्यासी है तो उसका रोल क्या है, गृहस्थ है तो उसका रोल क्या है, एक गृहस्थ है तो उसके ऊपर अन्य सभी जो आश्रम हैं सभी उसके ऊपर टिके हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत महान है, शास्त्र में बताया गया है गृहस्थ आश्रम बहुत महान है, लेकिन इस तरीके से महान नहीं है जैसा आजकल के लोग सोचते हैं, गृहस्थ आश्रम सबसे महान है, इसलिए सन्यासी बनना ये एस्केपिज्म है, ये डर के भागना, इस तरह से नहीं है, लेकिन क्योंकि गृहस्थ आश्रम के ऊपर अन्य सभी आश्रम का जो शरीर यापन है वो टिका है, इसलिए गृहस्थ आश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से ये वर्ण और आश्रम में संबंध है। समय समाप्त तो होते जा रहा है। अभी ये जो हम वर्णाश्रम देख रहे हैं यहाँ पर भक्तों के लिए, अभी हम चर्चा किए तीनों के, हम चर्चा कर लिए सेकेंडरी नियम, तो अभी भक्तों के लिए भी वर्णाश्रम है, और हम वहां देखे जो स्मार्थ हैं जो कर्म कांड का पालन करते हैं वो भी वर्णाश्रम पालन करते हैं, तो क्या अंतर है भक्तों के वर्णाश्रम में और स्मार्थ कर्मकांड जो पालन कर रहे हैं जो मीमांसक हैं उनके वर्णाश्रम में, या जो ज्ञानी हैं जो कर्मयोग जिसे भगवान भगवद्गीता में बताए हैं निष्काम कर्मयोग, उनमें और भक्तों के वर्णाश्रम में क्या अंतर है। तो जैसा हमने बताया कर्म के जो पथ पर हैं उनका ध्येय है भौतिक जगत में सुख शांति, लेकिन जो भक्त है वो वर्णाश्रम का पालन कर रहा है एज सेकेंडरी नियम, माध्यमिक नियमों की तरीके से भक्ति में सहायता करने के लिए, इसलिए वो इन नियमों से उस तक बंधा है जब तक वो उसे उसे भक्ति में मदद करते हैं, जिस हद तक वो उसे भक्ति में मदद करते हैं। लेकिन जो कर्मकांडीय है वो उसका उद्देश्य ही है इन नियमों को पालन करके केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। तो इस विषय में भक्ति विनोद ठाकुर दोनों में हमको भेद बताते हैं। वर्णाश्रम में स्थित लोगों की चेतना जब भक्ति भाव से परिपक्व हो जाती है तब वे भक्त का जीवन अपनाते हैं। तो जो स्मार्थ ब्राह्मण हैं वर्णाश्रम में हैं, जब उनकी चेतना परिपक्व हो जाती है भक्ति भाव में तब वो भक्त का जीवन अपनाते हैं, किंतु जब तक वे ऐसा नहीं करते उन्हें कर्म करने वाला कहा जाना चाहिए। कर्म भक्ति का आवश्यक अंग नहीं है। जब कर्म पूरी तरह परिपक्व हो जाता है और भक्ति कार्यों का रूप ले लेता है तो इसे भक्ति कहते हैं, कर्म नहीं। तो जो हम कर रहे हैं, जो भक्त लोग वर्णाश्रम करते हैं, वो कर्म नहीं कहलाता, वो कर्मकांड नहीं है, वो भक्ति का अंग है, वो वैदिक भक्ति का अंग है, वो वैदिक भक्ति का माध्यमिक नियमों का अंग है, वो कर्म नहीं है। तो इसे भक्ति कहते हैं, कर्म नहीं। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा पनपते ही तत्क्षण व्यक्ति कर्म की परिधि को लांघ जाता है। भक्तों के हाथ में शास्त्रों में वर्णित तीन साधनाएं कर्म, ज्ञान एवं भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के साधन सिद्ध होते हैं, और इस प्रकार भक्ति का अभ्यास समुचित रूप से होता है और कर्म एवं ज्ञान भक्ति में नियोजित हो जाते हैं। तो जो शास्त्र हैं जब वो भक्तों के हाथ में हैं तो कर्म और ज्ञान भक्ति में सहायता करते हैं, इसलिए वो भक्ति के अंग बन जाते हैं। इसके विपरीत स्मार्तों के हाथ में कर्म और ज्ञान केवल भौतिक समृद्धि तक सीमित रहते हैं और भक्ति भी भौतिक समृद्धि के अधीन हो जाती है, अतः भक्ति नहीं रहती। तो कर्मकांडियों के द्वारा जो विष्णु पूजा है, कई लोग बोलते हैं हम भी वैष्णव हैं, जाति वैष्णव है, हम भी, हमारे घर में ही पूजा होती है, विष्णु पूजा होती है, लेकिन क्या होती है, वो ये होती है कर्मकांडीय पूजा, विष्णु की पूजा होती है, लेकिन किस लिए, कि वो भी हमारी इंद्रिय भोग के लिए एक माध्यम है, इसलिए। तो उनके हाथों में जो विष्णु पूजा है वो भक्ति नहीं है। हमने कहा कि कर्म में भी भक्ति जरूरी है, ज्ञान में भी भक्ति जरूरी है, लेकिन वो वहां भक्ति नहीं कहलाती क्योंकि वो बहुत थोड़ी है, इसलिए वहां पर भक्ति नहीं कहलाती, वहां पर वो कर्म कहलाता है, वहां पर वो ज्ञान कहलाता है। तो ये अंतर है। तो ये जो वैदिक भक्ति के जो नियम हैं माध्यमिक और प्राथमिक, उन दोनों में तालमेल क्या है, अगर दोनों में मुठभेड़ हो तो क्या करना चाहिए, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां वर्णाश्रम के अनुसार और जो भक्ति की जिम्मेदारियां उसमें मुठभेड़ हो तो क्या करना चाहिए, क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो उसके संबंध में भक्तिनाथ ठाकुर ये वचन कहते हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक सुनिए, बहुत जरूरी है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं, शारीरिक आवश्यकताओं के संबंध में कर्म करना और जड़ एवं चेतन में भेद करने के लिए ज्ञान का अनुशीलन करना अविकल्पनीय है। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं हम इसको छोड़ देंगे, वर्णाश्रम की कोई जरूरत नहीं है, हम तो भक्त है, तो ठीक है बिना खाए भक्ति भजन कीजिए, हमें वर्णाश्रम की जरूरत नहीं है, तो फिर आप क्यों ये आसुरिक वर्णाश्रम में जा रहे हैं, जो ये सब जॉब कर रहे हैं। तो देवी वर्णाश्रम और आसुरिक वर्णाश्रम, ये दो शब्द हमने सुने। जो स्मार्तों के द्वारा वर्णाश्रम अनुशीलन है वो कौन सा है, वो आसुरी है, और जो भक्तों के द्वारा वर्णाश्रम पालन है वो कौन सा है, वो दैवी है, वो है जो भक्तिदान सरस्वती महाराज, जो भक्तिदान ठाकुर, जो हम लोग यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वो जरूरी है दैवी वर्णाश्रम, तो कह रहे हैं कि जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं और हमारी भौतिक आवश्यकताएं हैं तब तक जरूरी है कर्म और ज्ञान, कर्म और ज्ञान जो भक्ति के लिए अनुशीलित है, वो कर्म ज्ञान नहीं कहलाता, फिर वो भक्ति बन जाता है, भक्ति का सेकेंडरी नियम कहलाता है। किंतु जहां कर्म और ज्ञान भक्ति अनुशीलन को ढक देते हैं वहां भक्ति और अधिक नहीं रहती, यानी वो कर्म कांडीय बन गया, ज्ञानी बन गया। किंतु जहां भगवान के प्रति समर्पण कर्म एवं ज्ञान पर हावी हो वहां भक्ति है, जहां केंद्र भगवान की सेवा है, जहां ऐसा नहीं है कि अभी घर में शौच अशौच समय है, किसी की मृत्यु हो गई है तो क्या किया जाए, घर में भगवान का विग्रह है, विष्णु है उपस्थित, तो कर्मकांडी क्या सोचेगा, इस समय में हम विष्णु पूजा करेंगे तो अपराध लगेगा, हम नरक में जाएंगे, इसलिए विष्णु पूजा बंद, ये दूषित समय है। लेकिन भक्त क्या सोचेगा, ये समय दूषण का है, सही है, तो मैं प्रयास करूंगा कि जो भक्त इस दूषण स्थिति में नहीं है वो इस समय आकर के विष्णु की पूजा करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई नहीं मिल रहा है, तो दूषित स्थिति होने पर भी विष्णु आराधना होगी, क्योंकि भगवान की आराधना वो होनी ही है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कर्मकांडी सोचेगा अगर मैं इस समय में आकर के भगवान की पूजा करूंगा तो नरक जाऊंगा, तो भगवान की पूजा बंद। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा सिर में दर्द है, चरण रज चाहिए, तो जो वो याज्ञिक ब्राह्मण थे या अन्य लोग थे, और चरण रज चाहिए, अरे चरण रज देंगे तो हम नरक में जाएंगे, नहीं देंगे। तो ये कर्मकांडीय विचार है, ये स्मार्तीय विचार है। भक्त का विचार है, गोपियां क्या कहती हैं, अगर चरण रज से भगवान का सिर दर्द ठीक होता है तो बिल्कुल लीजिए, आप नरक में जाएंगे। नारद मुनि बोले तो क्या हुआ, अच्छा है, अगर भगवान के सिर दर्द ठीक होता है और हम नरक में जाते बहुत अच्छा है। तो ये डिफरेंस है, समझ रहे हैं, कर्मकांडीय विचार का वर्णाश्रम और भक्तों का वर्णाश्रम में ये भेद है। किस चीज का भेद है, चेतना का भेद है, मुख्य रूप से चेतना का भेद है। जो वैदिक भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं उन्हें भगवान के प्रति समर्पण को स्वयं के जीवन का प्रधान कार्य समझना चाहिए, ये उनका प्रधान कार्य है भगवान के प्रति समर्पण। वर्णाश्रम के नियमों का अनुसरण करने के द्वारा शरीर को टिकाना आवश्यक है, किंतु भक्त कभी भी उन नियमों को भगवान की भक्ति पर हावी नहीं होने देता। ऐसा नहीं कि शरीर को टिकाना जरूरी है तो क्या करेंगे, हम रोज जिम में 2 घंटा लगाएंगे। तो अगर शरीर को टिकाने के लिए आप हरे कृष्णा कीर्तन में नाचने गाने से आप स्वस्थ रह सकते हैं तो फिर क्यों जिम में जाकर के 2 घंटा व्यर्थ किया जाए। तो ये चेतना का भेद है, शरीर को टिकाना है, जितना कम से कम समय में शरीर टिक सके स्वस्थ रहना चाहिए, लेकिन शरीर ऐसा नहीं कि नेग्लेक्ट करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम 3-4 घंटे जिम में जाकर के व्यायाम करेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है शरीर टिकाने के लिए। वो मसल दिखाने के लिए जरूरी है, वो मिस्टर वर्ल्ड बनने के लिए जरूरी है, शरीर टिकाने के लिए जरूरत नहीं है। किंतु भक्त कभी भी उन नियमों को भगवान की भक्ति पर हावी नहीं होने देता। वो नियम सदैव भक्ति अनुशीलन के अनुयायी रहते हैं। जहां कहीं भी आत्मा को अनुभव के भौतिक दायरे से अतीत समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, यह ज्ञान सदैव भक्ति अनुशीलन के दास की भांति रहता है और भक्ति के स्तर को कभी नहीं लांघता। सभी कर्म और सभी ज्ञान मात्र भक्ति में प्रगति करने के निमित्त हैं। यह है वैदिक भक्ति अनुशीलन करने वाले भक्तों का जीवन की जीवन जीने की शैली। कैन वी एक्सटेंड 5 मिनट्स? वैदिक भक्ति के पथ पर चल रहे भक्त को भगवान के प्रति भक्ति का अनुशीलन अपने जीवन को नियोजित करते हुए करना चाहिए, क्योंकि बद्ध जीव एक भौतिक शरीर से बंधे हैं, उन्हें शरीर संबंधी आवश्यकता आवश्यक कार्यों को करना ही चाहिए, किंतु यहाँ कार्य उसे इस प्रकार करने चाहिए, यह कार्य उसे उस प्रकार करने चाहिए जिससे वह और अधिक भौतिकता से प्रभावित न हो। समस्त कार्यों को भक्ति से मिश्रित कर वे भगवान के साथ अपने संबंध का अनुशीलन कर सकते हैं। वर्णाश्रम धर्म एवं वैदिक भक्ति में क्या संबंध है? क्या लोगों को चाहिए कि वैदिक भक्ति का आश्रय लें और वर्णाश्रम धर्म के नियमों को त्याग दें, या उन्हें वर्णाश्रम के नियमों एवं उत्तरदायित्वों का पालन करते हुए भक्ति के विकास के लिए वैदिक भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए? पहले कहा गया था कि वर्णाश्रम धर्म का आशय है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से शरीर का पालन पोषण करना, मन का विकास करना, समाज के लिए सत्कर्म करना एवं आध्यात्मिक विषयों को सीखना। ये सब भक्तिवन ठाकुर की शिक्षाएं हैं चैतन्य शिक्षामृत में से करना, क्योंकि मनुष्य एक भौतिक देह से बंधे हैं, उन्हें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना ही होगा, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि शरीर मन समाज एवं आत्मा के विकास के बिना मनुष्य जीवन अवनति को प्राप्त होता है। वर्णाश्रम के नियम इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हैं, अतः उनका पालन किया जाना चाहिए, किंतु अंतिम लक्ष्य वे नहीं है। वर्णाश्रम धर्म की सहायता से व्यक्ति को भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए, किंतु वर्णाश्रम के नियमों का पालन करने में अत्यधिक समय व्यय के कारण हो सकता है कि व्यक्ति के पास भक्ति का अनुशीलन करने का समय ही नहीं बचे, है ना? दिस मे हैपन, हम सोचे इतने सारे नियम है कैसे करेंगे। तदुपरांत जहां सिद्धांतों में भेद हो वहां क्या किया जाए? प्रथम तो शरीर मन समाज एवं आत्मा का भरी भांति ध्यान न रख कर व्यक्ति भक्ति की अधिक उन्नत क्रियाओं को नहीं कर सकता। भक्ति का बीज यानी श्रद्धा हृदय में पनपेगी यदि व्यक्ति नहीं पनपेगी सॉरी यदि व्यक्ति अकालिक मर जाए या उसमें मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाएं या वह आत्मा के विषय में कभी कुछ न सीख सके। तो ये बहुत प्रैक्टिकल है ना, हम नेग्लेक्ट करेंगे शरीर को, आयुर्वेद क्या जरूरत है आयुर्वेद की, हम तो भक्त हैं, तो ठीक है कुछ दिन आप नेग्लेक्ट करेंगे और फिर शरीर इतना बिगड़ जाएगा कि अभी आप हरिनाम नहीं कर सकते, क्योंकि आप उस स्तर पर नहीं थे कि शरीर की स्थिति कैसी भी हो जैसे सनातन गोस्वामी शरीर में कुछ भी कैसे भी वो सब बहुत स्किन डिजीज और क्या क्या है, लेकिन हरि नाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक हम ऐसे स्तर पे नहीं है तो निश्चित है कि अगर शरीर समाज पारिवारिक स्थिति सुचारू रूप से नहीं है तो हमारे भजन में बाधा है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमको त्याग दें। और यदि लोग वर्णाश्रम के नियमों को त्याग दें और स्वेच्छा से कार्य करें तो उनके शारीरिक एवं मानसिक कार्य एक पागल व्यक्ति की भांति होंगे, जो आज हो रहा है। जैसे आज महाराज कह रहे थे ट्रैफिक जैम है, सब प्रकार के पागलपन है। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वे जघन्य पाप कर्मों में लिप्त होंगे और भक्ति का कोई चिन्ह नहीं होगा। हालांकि वर्णाश्रम धर्म को पालन करने में समय का व्यय होता है, किंतु इसका अनुशीलन भक्ति के सहायक के रूप में होना ही चाहिए और साथ साथ भक्ति के अनुशीलन से शुद्ध वर्णाश्रम धर्म की गतिविधियों में व्यय होने वाला समय स्वाभाविक रूप से घटेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि शुरू शुरू में ज्यादा नियमों को पालन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ज्यादा समय जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो समय कम होता जाएगा। इसके अतिरिक्त भक्ति के विकास से वर्णाश्रम धर्म के विभिन्न कर्तव्य भक्ति कार्यों में परिणित हो जाएंगे। तो बहुत से कार्य हैं जो भक्ति कार्य में परिणित हो जाएंगे हमारे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी वैसे वैसे वो कार्य सब भक्ति में कार्य हो जाएंगे। जैसे एक किसान खेती कर रहा है, तो अभी वो पहले खेती कर रहा है अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन वही खेती का कार्य वही अन्न उजाना उसका भक्ति में परिणित हो जाएगा जब वो पूरी चेतना में होगा कि मैं ये अन्न उगा रहा हूँ भगवान को, अपने विष्णु को, भगवान के जो विग्रह है उनको अर्पित करने के लिए। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम के कार्य परिणित हो जाएंगे भक्ति के कार्य में। पहले व्यक्ति को चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार पांच प्रकार के भक्ति कार्यों का पूर्ण रूपेण पालन करे। पांच प्रकार के कार्य कौन से हैं? श्रीमद् भागवतम अध्ययन, हरिनाम, धामवास, लक्ष्य विग्रह की पूजा और भक्त सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार पांच प्रकार के भक्ति कार्यों का पूर्ण रूपेण पालन करें। अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए, जिसमें काफी समय का व्यय हो सकता है लेकिन फिर भी जरूरी है, जो आवश्यक है वो करना ही चाहिए, किंतु जैसे जैसे वह भक्ति में प्रगति करे उसे चाहिए कि धीरे धीरे उन वर्णाश्रम कर्तव्यों को त्याग दे जो भक्ति सिद्धांतों के विपरीत हों। तो ऐसे बहुत सारे नियम धीरे धीरे होंगे जो अभी रुकावट प्रस्तुत करेंगे, तो उस समय उनको त्याग देना होगा। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, संध्या वंदनम, तो ये एक ब्राह्मण के लिए वर्णाश्रम का, जो ब्राह्मण है उसके लिए संध्या के समय में ये विष्णु की उपासना का तरीका है। लेकिन उस समय में यदि ऐसा हो कि व्यक्ति लेक्चर सुन रहा है प्रभुपाद का, अभी समय हो गया है संध्या का, संध्या वंदनम का, तो क्या करे? तो जो कर्मकांडी व्यक्ति होगा वो लेक्चर को रोक करके अभी संध्या वंदनम शुरू करेगा, लेकिन जो भक्त होगा लेक्चर सुन रहा है उसको पता है कि वो संध्या वंदनम का उद्देश्य पूरा हो रहा है लेक्चर सुनने से, तो वो उसके लिए वो लेक्चर बंद नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि अभी महाराज लेक्चर दे रहे हैं, महाराज अभी संध्या वंदनम का समय हुआ है हम जरा जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी धीरे धीरे वो समझ रहा है कि ये सब जो वर्णाश्रम के नियम है कैसे वो भक्ति परिणित है, वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, इसलिए उसका सामंजस्य करेगा, इसलिए उसमें मुठभेड़ नहीं होगा। अंत में भक्ति से शुद्ध होकर बचे हुए वर्णाश्रम कर्तव्य साधना भक्ति के दास बन जाएंगे। इस प्रकार से कार्य करते हुए वर्णाश्रम के कर्तव्य में भक्ति में कोई मतभेद नहीं होगा। भक्ति के अनुशीलन से एक ब्राह्मण, देखिए सुनिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या वैष्णव के अंदर भेद है? एक ब्राह्मण वैष्णव ज्यादा प्रगत है, एक शूद्र वैष्णव कम प्रगत है, क्या ऐसा है? इस प्रकार से कार्य करते हुए वर्णाश्रम के कर्तव्यों एवं भक्ति में कोई मतभेद नहीं होगा। भक्ति के अनुशीलन से एक ब्राह्मण एवं एक शूद्र का जीवन भक्ति से शुद्ध होकर समान हो जाएगा। शूद्र भगवान एवं भक्तों के प्रति सेवा करने से प्रकाशित होकर स्वार्थ रहित ब्राह्मण के समान हो जाता है। इस प्रकार वैष्णव भाईचारे की शुद्धता चार वर्णों को परस्पर इस सीमा तक प्रशस्त करेगी कि संसार वैकुंठ लगने लगे। तो इस प्रकार से दैव वर्णाश्रम नहीं है कि हम यहाँ भक्तों के अंदर भेद करने वाले हैं कि एक ब्राह्मण भक्त, सब भक्त हैं, लेकिन इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत को के कार्य के लिए, भौतिक कार्यों के लिए हम आपस में डिवाइड करते हैं, जो जिस चीज में एफिशिएंट है, जिसके अंदर जो गुण है वो वैसा कार्य करे भौतिक, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो उन्नत है कि नहीं वो तो निश्चित होगा तीन चीजों पर, नामे रुचि, जीव दया, वैष्णव सेवा, ये तीन पे आधारित है कौन व्यक्ति कितना प्रगत है, नहीं कि कोई ब्राह्मण है कि कोई शूद्र है कि कोई क्षत्रिय है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तो विभाजन, जो भक्तों के अंदर विभाजन नहीं है, ये केवल भौतिक स्थिति के लिए, जैसे अभी यहाँ आयोजन हुआ है तो राधेश प्रभु यहाँ मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो कुछ भक्त यहाँ पर प्रवचन दे रहे हैं, तो कुछ भक्त सफाई की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भक्त किसी से अधिक ऊपर है मात्र इसलिए कि वो ऐसा कार्य कर रहा है, जस्ट ये मैनेजमेंट के लिए जरूरी है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वैकुंठ लगेगा। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि कैसे ये जो वर्णाश्रम हम टाइम हो गया वर्णाश्रम जो हम बात कर रहे हैं उसका क्या संबंध है भक्तों से, क्या डिफरेंस है स्मार्ट में, क्या है वो जो महाप्रभु ने बोला रामानंद राय को कि ये वर्णाश्रम बाह्य है। कई बार भक्त बोलते हैं प्रभु चैतन्य महाप्रभु तो उसको बोल चुके हैं रिजेक्टेड, तो वो किसको रिजेक्ट किए, किस वर्णाश्रम को रिजेक्ट किए, वो ये स्मार्ट वर्णाश्रम को रिजेक्ट किए, जो ये भौतिक वर्णाश्रम की विचारधारा है, जो आसुरी वर्णाश्रम की विचारधारा है वो इसको रिजेक्ट किए, ना कि देवी वर्णाश्रम की विचारधारा को। चैतन्य महाप्रभु खुद बोले बाद में जहां पर स्वीकार किए, स्थाने स्थित श्रुतिगताम, अपने स्थान में स्थित होकर के आप भजन कीजिए, आप चाहे ब्राह्मण क्षेत्र जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके श्रवण कीजिए। जब भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, तो क्या चीज छोड़ने को, क्या धर्म छोड़ने को बोले, तो वो जो अभी तक भगवद्गीता में भगवान कर्म और ज्ञान बताए थे पहले 6 अध्यायों में उसको छोड़ने के लिए बोले, न कि भक्ति वाले वर्णाश्रम को छोड़ने के लिए बोले। नहीं तो फिर क्यों अर्जुन ये सब सुनने पर भी क्यों धनुष बाण लेकर के युद्ध किए, क्षत्रिय का नियम क्षत्रिय के पालन किए, तो ये वर्णाश्रम को नहीं। लेकिन अर्जुन करिष्ये वचनम तवा, अभी वो बंधे नहीं है क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं इसलिए मैं युद्ध करूंगा, मात्र ये भावना नहीं है, क्षत्रिय तो हूं लेकिन भक्त हूं इसलिए आपका आदेश है इसलिए मैं ये कर रहा हूं। तो अभी ये वर्णाश्रम के नियम नियोजित हो गए भक्ति सेवा में। तो ये है दैवी वर्णाश्रम, हम जिस स्थिति में है जो भी हमारा वर्णाश्रम का कर्तव्य है वो नियोजित हो जाएगा भगवान की भक्ति सेवा के अंदर, और इस प्रकार से वैकुंठ की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आज हम देखें कितना जरूरी है कि नवविधा भक्ति को सपोर्ट करने के लिए ये द्वितीय स्तर के नियम, सेकेंडरी नियम, इन नियमों के नहीं होने पर जो आज समाज में हो रहा है सब उथल पुथल है, हमारी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति बड़ी उल्टी है, भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो भक्तों को जरूरी है विचार करना कि अनुकूल को ग्रहण करें और प्रतिकूल को छोड़ें। जो भक्त ये विचार नहीं करते कि क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, तो वो भक्ति में प्रगति अच्छे से नहीं कर सकते। भक्ति सांत सरस्वती महाराज कहते हैं, इसी में आएगा, इसी ऑर्डर में 2 मिनट्स मोर फाइन लास्ट स्लाइड। तो भक्ति सांत सरस्वती महाराज कहते हैं, जो शिला रूप के अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जनम श्लोक में, अर्थात केवल भक्ति के लिए अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना एवं प्रतिकूल वस्तुओं को त्यागना इस सिद्धांत में स्थिर नहीं है, वे गुरुपाद पद्म को शरणागत नहीं है। मैं सभी संसारी कार्यों को इस प्रकार से करूंगा कि वे कृष्ण सेवा के लिए अनुकूल हों, न कि अभक्त जनता के लिए अनुकूल हों। तो कल के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे जो हमारी आज की सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो प्रतिकूल है हमारी भक्ति के लिए, तो क्यों वो प्रतिकूल है और कैसे हम उसको अनुकूल बना सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। माफ कीजिए थोड़ा ज्यादा समय हो गया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।